कृष्ण ब्रज में ही रहे केवल तो मथुरा में भी उनके भक्त हैं, द्वारका में भी भक्त हैं और जगह में भी उनके भक्त हैं, वहां भी तो जाना पड़ेगा कि नहीं। ये जथान नाम प्रपत्यं थे काम प्रचलित है, मैंने प्रतिज्ञा की। कुछ उनके कर्तव्य भी हैं जगत में, प्रेम का स्वागत करना है और रसिक भक्तों के साथ में उनके लीला विलास इत्यादि हैं, नहीं तो फिर भी और भी तो कुछ कर सकते हैं। इस अतिरिक्त कुछ बंद ही हो गए, गोपियां जो रो रही हैं, तड़प रही हैं, तो आप मछली की भांति अब कृष्ण से रहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, उनका चित्त भी अत्यंत भ्रमित हो गया और ये दृश्य देखा नहीं जाता। उन्होंने अपने को थोड़ा सा इशारा किया, सह न सके इसलिए, ऐसा नहीं कि वो पुरुष बन गए, सह नहीं सके, दृश्य को देखने में वो अपारक हो, इसलिए उन्होंने इशारा किया। यहाँ पर कृष्ण जबकि वो भाव से विभावित होकर के द्रवित हुए, किंतु बलदेव जी और अपूर्व के साथ में थे, इसलिए कहीं उन कृष्ण के इस हृदय जो उनका द्रवित हो गया है ये दोनों न समझ पाए, इसलिए क्या किया, चित्त द्रवित हो रहा था, मन अब रो देंगे, वो भी विलास करेंगे गोपियों की भांति, किंतु कर नहीं सके, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी विजातीय देकर के अपने भावों का संवरण करते थे, जैसे वो अढ़ाई ग्राम में जा रहे हैं और शुद्ध रूप के साथ में रूप जी थे महाप्रभु जी थे और साथ साथ में वल्लभाचार्य जी थे, वल्लभाचार्य जी हैं बात्सल्य रस के रसी, इसलिए वो मधुर रस के भाव को नहीं समझते, इसलिए विजातीय हैं, जगति प्रेमी हैं, भक्त हैं, कहां उन्नत बात करते रहते, कभी महाप्रभु जी उनके सामने गोपनीय रखा, ये सब ब्रह्मा के लिए भी मुश्किल। उद्धव जी ब्रज में गए, गोपियों का साथ किया, कभी गोपियों का यह भाव उनमें संक्रमित नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उनकी दीक्षा शिक्षा की गई है, दीक्षा शिक्षा की, जब तक कि ऐसा कोई न हो, ऐसा प्रेमिक हो जिसमें गोपियों का यह भाव हो और उससे दीक्षा शिक्षा न हो तो नहीं होगा। इसलिए कृष्ण ने उद्धव जी को गोपियों की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा था, अपने माता पिता की सांत्वना के लिए नहीं, वो नहीं हो सकता है उद्धव जैसे आदमी के साथ, गोपियों को उद्धव जी के बातों से और साप अधिक पड़ गया और मरने लगी, दीपना होने लगी, इसके लिए जो गोपियों को सांत्वना होगी, माता पिता को सांत्वना होगी, इसके लिए नहीं भेजा। ये साधारण लोग जानते हैं कि माता पिता उनके अर्थों की व्यंजना ऐसी है कभी, जिससे कि साधारण लोग नहीं समझते, वो गोपियां ही समझते हैं, या उसमें मंत्र में जो दीक्षित रहने वाले रूप गोस्वामी इत्यादि हैं जो साक्षरियां हैं वो क्यों समझेंगे, तो इस विषय में जिनका संस्कार नहीं हुआ वो कैसे समझेगा। इसलिए उद्धव जी को भेजा, भी तुम्हारा संस्कार हो तो भी उद्धव जी को संस्कार होने पर भी ये नहीं हुआ, गोपियों की साक्षरी बन जाऊंगे, पर गोपियों की चरण दूर के लिए कुसुम सरोवर में आज भी उनके चरणों की रंग की सेवा नहीं आए, तो ऐसे ही हो जाएगा। इसे अद्वैतवादियों का संग करने से, मायावादियों का संग करने से, या जिनको ये सचरी का भाव नहीं है, ऐसे लोगों के जिनमें वास्तव्य की भावना है उनका संग करने से ये नहीं होगा, जिसका सचरी गोस्वामी का ये भाव है वो होने से तभी इन चीजों को समझ सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उन भावों को विशाखा जी की कृष्ण के लिए भी आगमन है, जलोधर्म में ऐसा लिखा, कृष्ण रथ से समुद्र है रथो वैचार, कृष्ण अनेक रथ है और एक रथ है, एक रथ में वो आत्मरथ का अनुभव करते हैं, सब रथों के जो विषय हैं कृष्ण उस विषय को के रूप में उनका साधन करते हैं, जसोदा मैया जी का वात्सल्य लाड प्यार जो करती है उसको तो समझते हैं, किंतु जसोदा की जिस भावना से लाड प्यार करती है इसको नहीं समझते, उनके अंदर में क्या भाव, गोपियां कृष्ण को प्रेम करती हैं किंतु किस भाव से राधा जी रोषित हो जाती हैं, कैसे उनको मान होता है, कैसे उनका अनुराग होता है, माधव इत्यादि की दशाएं होती हैं, ये कृष्ण के लिए ये बहुरस है। बहुरस माने अपना आत्मरस और उन गोपियों का भावों का साधन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। राधा जी का भाव उनके लिए अगम्य है, अपरिचित है, ये बहुरस है। उन गोपियों के जो भाव है उनको नहीं जानते, ये कैसे होगा? उनके जो अपने जो मंदिर इत्यादि हैं, इस रस में जो विभावित चित्त वाले हैं उनके लिए होगा। अब विशेष करके जिनको गोपाल मंत्र नहीं मिला, जिसको काम गायत्री नहीं मिली, ये रहस्य कर रहे हैं। इसलिए ये सब के द्वारा मंत्र की स्तुति से इन चीजों को समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकता है। लाख जन्म लाख चेष्टा करें, जिसको ये भाव ही नहीं वो कहाँ से दे सकता है? उनके संग से नहीं हुआ, विद्वानों के संग से शब्दों का ये ऊपर का जो रूप अर्थ है वो मालूम होगा। उसकी अभी व्यंजना उसके भीतर में क्या छिपा है, ये अनुभूति का विषय है। केवल व्याकरण से अर्थ करेगा वो क्या बतला सकता है? एक आदमी गीता पढ़ रहा है और गीता पढ़ते पढ़ते रोता है और उच्चारण कैसे करता है, अनुसार विषय का कोई भी बात नहीं, ऐसे पढ़ता है रोता है। और पंडित लोग अनुसार विषय का उच्चारण करते बड़े भाग से पढ़ते हैं, उनको कुछ नहीं होता। महाप्रभु जी गए, उससे पूछा, भाई आप गीता पढ़ते हैं आप रोते क्यों? बात क्या है? मैं निरंतर आदमी हूँ, मैं किस अर्थ नहीं जानता। मैं जब गीता सुनता हूँ तो देखता हूँ कि कृष्ण का रस खड़ा है, अर्जुन विषादग्रस्त और कृष्ण उनको समझा रहे हैं, ऐसे प्रेम भरी बातों से समझा रहे हैं। ये सुन करके हमारा चित्त दर्पित हो जाता है, मैं अपने को रोक नहीं पाता। यही इन पंडितों को मूर्ख वक्ता करने वाले स्वामी विचार इत्यादि का उनसे ये भाव नहीं आएगा। इसे यहाँ पर कह रहे हैं कि वो किसी प्रकार की गोपियां हैं अपनी भावना को कोई गिर पड़ी, कौन गिर पड़ी? मूर्ति राधिका की, उसमें जो कम है वो अभी मूर्ति जैसी खड़ी है, चित्र लिखता मूर्ति की भांति, जैसे ये मूर्ति बढ़ी है, फिर भक्ति विनोद ठाकुर है, फिर तो बोल रहे हैं चाली नहीं, ऐसे मूर्ति की भांति जो मूर्तियां आगे बढ़कर से रथ को पकड़ लिया, उनसे कम उनकी अनुभूति है ना विरस, इसलिए उसको पकड़ रही है और रो रही है, उनको होश है और उनको कृष्ण अपने इशारे के कारण आया से मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूँ कलकत्ते में, अभी जा रहा हूँ आज कल और कल मैं वहां रह करके काम समाप्त करके परसों में लौट आए थे। दौत्यकई दौत्यकई मैंने जिनको होश था अपने वचन रूपी रूप से उनको कहा और वो जाकर के ललिता इत्यादि जो अभी चित्र लिखित खड़ी है या जो गिरी हुई उसकी फिर जाकर के वो कहेंगे कि कृष्ण ये बोल करके हमको गए हैं जो उनसे कह दो क्योंकि अभी तो सुन नहीं सकती, वो तो एकदम दुखित है, इसलिए उनको कृष्ण कहने से भी काम जाएगा, काम ले जाएगा वो तो नहीं हो सकता। इसलिए जिनको कुछ होश है, जिसको कुछ विरह का ताप उतना नहीं है, जिनको मादन मुदन का भाव नहीं है, वो लोग कुछ सुनते हैं। उनको कृष्ण ने कहा कि बस मैं आज जा रहा हूँ और रास्ते परसों में मुझे मैं जरूर लौटूंगा, ये नहीं कहा कि मैं परसों लौटूंगा, आयत से मैं अब कृष्ण चले गए, ये धूल उड़ रही है, पहले रथ दिखा कृष्ण पीछे मुड़ करके उनके तरफ में देख रही दिखा भरी लगे जिन्हें की बैठा किसे समझाए, बलदेव जी को समझाए, नाथुरु जी को समझाएंगे, उनकी जय दशा कौन समझेगा, जिन गोपियों के लिए कृष्ण का हृदय कैसे तड़प रहा है ये कैसे समझाए, क्यों नहीं समझा सकते? यदि वही अनंग मंजरी होती तो कुछ समझ जाते, बदल प्रयोग में बासल जाता डॉक्टर सख और बासल नहीं है, इसलिए ये नहीं समझ सकते इनके भाव, इसलिए बलदेव जी से नहीं कहा, अपू से कहेंगे अपू से अपने आंखों को ऐसे पूछ लिए हूँ, छिपा करके पूछ लिए हूँ, कैसे एकदम बच कुछ किस हृदय उनका एकदम कैसा हो रहा है, क्या आखिर दबदबाई में मुख्य करके और रुपयों के गोपियां देख रही हैं, अब इनका चित्र द्रवित हो गया है, आ जाए अभी लौट, अभी जा रहे हैं बीच के लौट। जब तक खड़ी रही जब की धूल दिखाई थी, धूल भी शांत हो गई, अब ये निष्कुट नहीं आया, थकान हो गई, निराश। निराश होने के पश्चात वहीं पर बैठ गई हुई दूसरी गोपियों ने, क्योंकि और जिनको चना पीरा नहीं या फल वाले जो है आकर के किसी प्रकार के वो जिनको लेकर के जा रहे हैं, इसी के लिए कारण सा निराश निर्दत्व तो गोविंद देवी बात है। और जो गोपियां थी वो क्या हुआ, कृष्ण के फिर हमें तड़पती हुई वो गान करती हुई मूर्खित हो गई, गोविंद छात्र के गिर गई, उसको होश नहीं रहा, कुछ चित्र की भांति गई, कृष्ण ने उनको उनका जो निकास शब्द ये जो आया के मैं आऊंगा आ रहा हूं, उनको सुनाई पड़ा, किनको सुनाई पड़ा, जिनका हृदय गठित कुछ कम उन लोगों ने सुना, तो ये क्या हुई, ये सुन लिया क्या हुई, यही दौड़ ये दूसरे एक कृष्ण का वचन जो निकला बचन रूपी नाक को जमी धूपी
मिलने
से ही उनका प्रणय हुआ, उसमें दूसरी की जरूरत नहीं हुई, ये प्रणय हम लोगों का हुआ राधा जी का रहे, अब दूसरी की क्या जरूरत है, अब फिर हमें ये दूसरी क्या करेगी, इसलिए यहाँ पर काम मिला था जिससे पिछु अब गोविंद अभी नहीं आएगा, किंतु आशा यही रहे क्या कृष्ण कभी झूठे नहीं हो सकते, आज तक उन्होंने जितना वादा किया है
सब पूरा किया,
वो सत्य प्रतिज्ञा है, धीर ललित नायक,
धीर
ललित माने नायक माने क्या, प्रति झूठ होने पर भी उसके प्रत्येक बात को जो कहते हैं उसको पूरा, इसलिए ठीक है रामचंद्र जी ठीक है किंतु ललित नहीं है, कोई धीर उत्थक है,
धीर शांत धीर
चारों प्रकार के नायक है, धीर ललित धीर शांत धीर उद्धव
धीर उदात्त उदात्त और फिर छह अनुभव,
इसलिए यहाँ पर कहते हैं एक क्षीण आशा लेकर, अब इस समय मैं गया था कोई और किसी और का पति मर गया या किसी का बेटा मर गया किसी मैया का, और मैया रोते रोते पागल है और कह रहे हैं कि हमारा बेटा मरा नहीं वो आएगा, ये क्षीण आशा है कि वो गया है अब वो आ जाएगा, आज नहीं तो कल जरूर आएगा, इसीलिए प्राण धारण कर रही कि तो लड़का तो गया है मर, उसको विश्वास नहीं हो रहा, कुछ लोग कहते हैं जैसे उस मरा लड़का तो मर गया, नहीं भाई वो मरा तो नहीं है, जैसे सुभाष चंद्र जी के लिए पेपर में आ रहा सुभाष चंद्र मरे नहीं अभी है, अच्छा ये बतलाओ तो 100 वर्ष से अभी की उम्र हो गई होती वो बड़ा है तभी एक फिर आता है, तो ऐसे ही जिंदगी अपने पीड़ा के लिए प्राण शांत के लिए गोपियां सोच रहे हैं, जब कह करके गए हैं आज तक उन्होंने वादा निभाया है इसलिए आएंगे, इसलिए उस समय तो कृष्ण चले गए धूल भी उठी हुई चली गई और नहीं आए, तो अब सोच रहे हैं जिससे वो जब गए हैं किसी गंभीर कार्य के लिए तो कार्य को पूरा करके जरूर आएंगे, आए से जब कहा आएंगे, इसलिए घर को लौटी, अच्छा अब कल के लिए देख रहे हैं कल का लिए अब आते होंगे, फिर देखे आज नहीं आया रात भर देखता रहे देखती रही, और कैसे उनके प्राण बच रहे हैं, प्रिय चेतितम निन्नु गायन से अपने चेतित कृष्ण के लीला क्षेत्रों का गायन करते हैं, तो क्या करती होंगी जस्यानुराग ललित
में तो बहुत
इत्यादि सब गायन करते, गोविंद दामोदर इत्यादि का गायन करते, जैसे है ना कृष्ण रमण
श्रेष्ठ रमण श्रेष्ठ
कृपणे आने सत्य दर्शन कर दे रही,
हे देव देव हे दैव
हे हे देव हे दैव हे भुवनैकवन्थो हे महेश्वरे सर्वैकसिन्धो हे रात में जैसे उनके साथ में हुआ, उनके आंखों को पूछे, उनके सब बिंदुओं को पूछा, उनके मुंह के धूल को पूछा, उनके चरणों में नकुट पहना रहे हैं, सिठोरिया उनसे कर रहे हैं, क्या वो रहस्य संपितो हितलोदयम प्रहतिताननम दैव वीक्षणम विहरनुच्यते ज्ञानमंगलम। मन कली जाता हमारा ये सब चीजें को याद कर रही है कि कृष्ण कैसे हमसे भी छोड़ी और ये सब इस बातें कर और रो रही है और श्लोक बद्ध अपने आप कर रहे हैं। इसके लिए श्लोक और पद्य नियम को बनाना पड़ता, अपने आप सरस्वती के जीवा में, वो तो खुद सरस्वती का अधिष्ठात देवी श्रीमती राधिका है, ये अपने आप ये जो क्या है कि अधिकम व्यास में नहीं लिखा,
राधा जी समाधि में देख करके लिखा,
समाधि में उन्होंने जो कहा है वो उसी को ये कर रहे हैं, इसे राधिका जी के मुख से या गोपियों के मुख से ये निकले, गोपी जी ये व्यास जी का व्यक्तित्व नहीं है, लोग समझते हैं ये भूल है, उन्होंने समाधि में ये सुना और सुन करके ये गोपियों की बहन जी ये गोपियों की जो बातें हैं ये सब व्यास की और किसी का लिखा हुआ नहीं, ये गोपियों के मुख हैं, उन्होंने समाधि में इसका अनुभव करके अवसरण किया सब लिखा। ये श्रीमद भागवत क्या है?
समाधि
है। ऐसा मत समझना जो व्यास देव जी ने इसको लिखा, लिखा नहीं समझ किया, उसको समाधि में सुना सुन करके उन्होंने कर दिया। तो विष्णु को अहनी निंदु गायन का विष्णु को यहाँ सब है, विष्णु मैंने कब शोक रहित हो रहे हैं? जब कृष्ण का गायन करती हैं और समझते हैं कि कृष्ण मिल रहे हैं, हमारे आंखों को पोछ रहे हैं, हमें सांत्वना दे रहे हैं, कृष्ण अपने आंखों से उस समय विशोक करते वो माननी बन जाती है, अभी तो आदमी भत्रिका बन जाती है उसी समय, कृष्ण है नहीं किंतु वो देख रहे हैं, ऐसे भाव अस्त सात्विक विकार हुए हैं जो उद्धव इत्यादि लोगों के लिए समझना भी कठिन है, कृष्ण भी कभी नहीं समझ पाते हैं कभी कभी, इसलिए फिर हमें उनके क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, इसलिए कभी कभी विशोक मालूम कर जैसे उनको शोक नहीं, किंतु ज्ञान कृष्ण थोड़ा सा बंद हो जाता है और सामने कृष्ण को नहीं देखती है तो फिर क्या हो जाता है, एकदम आग में तड़ में तड़, मछली से भी अधिक भगवान अभी संप्राप्तो रामापुरुषो रथेन वायु देवेन कालेन जी अभिनाते हैं भगवान जी। भगवान को इसलिए कहा यहाँ पर बहुत मरते का विशेष भाव है, यहाँ पर कृष्ण गोपियों के भाव में विभावित होकर के मधुर रस को प्रकाश कर रहे हैं ना, किंतु ये मथुरा जा रहे हैं उनको भूल करके ये भगवत्ता एक ऐश्वर्य धाम की तरफ जा रहे हैं ना, जाना उचित नहीं था, वृंदावन बड़े को छोड़ करके गोपियों का प्रेम माता पिता का स्नेह छोड़ करके जाना संभव नहीं था, किंतु चूंकि भगवान है उनमें ऐश्वर्य भी भाव है, इसलिए कंस को मारना चावल को मारना और सब पशुओं का संहार करके धर्म की प्रतिष्ठा भी करनी है आत्मधर्म, इसलिए उस समय में ये ऐश्वर्य व्यू आया, ये ऐश्वर्य भाव संक्रामित होने के कारण ही मथुरा जा रहे, इसलिए भगवान है कभी यदि नंद पुत्र होते गोपीकांत होते राधा रमण होते तो जाते, इसलिए उनके लिए कहा गया कि देखो ऐसा मत समझो वो भगवान जी, उनके लिए तो और भक्तों के भी भाव देखने हैं ना, उनको ये भी देखना है कि कंस को मारना, हमारे माता पिता जो ऐश्वर्य देवराज के लिए हैं हमारे बाचक हैं वो बेटी और छपड़ी में बंद हैं, उनके छाती पर चक्की रखकर के दाल पीसा जा रहा है, अपने पैरों के अंगूठे से उसे मारता है, अपमानित करता है, इसलिए हमारी जो द्वारका में बहुत सी रानियों के साथ में विवाह करना है वहां पर, और शुभ जैसे काल जमन है और जरासंध है, वो चतुर्भुज कौन बना था, इनका संहार करना है, वो बंदर बिल्ली इत्यादि का दंश करना है, ये तो ऐश्वर्य में ली जा रहे हैं, इसलिए उसको करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए भगवान अपि भगवान होते हुए भी वो जा रहे हैं। राम अक्रूर तो जूतो, यहाँ पर राम है और अक्रूर, अक्रूर कौन राष्ट्र भक्त है, दास्य माने कौन, दास्य दास्य नहीं ऐश्वर्य जूत, इसे ऐश्वर्य युक्त जो दास है उसके सामने ये मधुर गोपियों की भावना को मैं कैसे मैं रो और कौन से गोपियों से मैं बहुत देर में आते हूँ ये कैसे कह सकते, ये संभव बद्रव जी से भी नहीं कह सकते, इसलिए उन्होंने अक्रूर जी को कहा जरा से की तरफ हम उसे सहा नहीं जाए, बस अरे बाई बेगे ना बाई बे चरस उड़ने लगा, कैसे घाटों के माध्यम से इस तरह से उधर गोपियां आकर के रथ का चक्का का पहिए का चिन्ह देकर के कहीं पीछा न पाए, इसे कभी घाटों से कभी इधर से कभी उधर से टेढ़ा मेढ़ा करते हुए बाई बेट से लेकर के चलते कालिंदी अपना आते हैं, कालिंदी ये कालिंदी मेरी जमुना है, कालिंदी कालिंद पर्वत से निकलती है, उनका पानी कैसा है, कृष्ण जैसा है, क्यों कृष्ण जैसा, गोपियों को नैनों में बचते हैं, उनका काज जमुना में गिर कर कृष्ण का अंग कैसा है, नील मणि के समान है, इसलिए उन अंगों का अंग राग भी जमुना में मिल करके नीचे से नील देखता है, क्योंकि जब उठाएंगे तब कैसे एकदम उज्ज्वल दिखता है, इसलिए उज्ज्वल नील मणि के समान है, इन्हीं के आधार पर उसको समय में उज्ज्वल नील मणि रचना उनके भावों को ने? वो भाव क्या है, ये जो उज्ज्वल नहीं है जो भाव जो है श्रीमती राधिका के पीछे यही उज्ज्वल नहीं है, कृष्ण के लिए उज्ज्वल मणि है ऐसा नहीं, वो तो उत्प्रेक्षा में उनको लगा सकते हैं, माने तुलना के लिए कृष्ण को नील मणि कहते हैं, किंतु नील मणि है क्या, राधिका जी के कृष्ण के प्रति ये जो मदनाथ और मादनाथ का ये स्वभाव ये उज्ज्वल नील मणि है, ये जसोदा में काली जी ने ये कुछ संक्रमित हुए हैं उनके भाव, इसलिए वो भी काली जी दिखती है कृष्ण जैसी है, कैसी है वो काली जी, अब नाश है अब को नाश करने वाली है, अब मैंने कृष्ण जी वहां पर पहुंचे और पहुंच करके क्या करें, सत्रो ऊपर पृष्ठ सविदा पिता मृत मणि पर हम पृष्ठ संडम अनुप्रज्ञ सरामो रथम आविश, कृष्ण वहां पर रथ से उतरे बलदेव जी के साथ और उतर करके पावनी जमुना जी के किनारे पहुंचकर सरिला पिता शरीर का आचरण किया, पान किया अपने अंजलि के बाद और आचमन किया, कैसे मित्र मनी क्रम समस्त अवों को नाश करने वाली है ये, कृष्ण ने सोचा आज गोपियों के देर में करो ये दुख है ना, तो दुख किस कारण से होता है, असर के कारण, के कारण ये दुख होता है, देह पाप ये तो होता नहीं, तो यहाँ पर विरह जो दुख है ये पाप ताप के लिए नहीं होता, किंतु इससे खूब गुण अरे प्रभावकारी, किसने सोचा कि आज विरह में व्यतीत हो रहा हूं, ये पाप जाता नहीं है, मैं किससे कहूँ किससे करूँ, कोई हमको सांत्वना ना देगा, ये जमुना सविता ये राधा जी की शक्ति, यदि इनका मैं स्पर्श करूँ इनका पान करूँ हमारा भी अब अत विरह का जो ताप है ये कुछ प्रश्न हो जाए, इसलिए उत्तर करके जमुना के पान फूल पर उत्तर करके उनका जल पान किया और अपने इस पर छिड़का, इसलिए हमारा ताप वो ताप क्या है कृष्ण का, पिताजी तो साथ में है सखा लोग भी साथ में है इसलिए उनका विरह नहीं, पीछे चलते किन का विरह, जिनसे कहा जो तुम कहा जाना आए थे उनके लिए नहीं, जो विरह प्रतीत होकर तुम वहां पर छत आते हुए गिर गई मुझे आत्म होकर उनके लिए, तो ये सोच रहे हैं कहो जमुना जी का स्पर्श से आसन से हमारा ये ताप दूर हो जाए, इसलिए जमुना के किनारे बड़े बड़े सुंदर वृक्ष हुई है, पर सुंदर सुंदर कदम्ब के वृक्ष हैं, तमाम वृक्ष हैं, आम के हैं, कदम्ब के हैं, नीप हैं और उस तरह के हरे पड़े हैं। इसलिए वृक्ष संग संग माने कहूँ वृक्षों से समूह से भरपूर ये जमुना है। तीर रंग नरंभ मार्गो कदम्ब भूषिता दिव्य कंधभा कदम्ब जन्म गंधरंदिनी ऐसी यमुना जी है। यमुना को देखकर तो उनको शांति आई और वहाँ उतर करके जल स्पर्श करते हैं, मालूम है ये कुछ हमारा हृदय था कुछ दुख भूषण हुआ उतर करके राम के साथ में और फिर रथ में बैठे गए। फिर रथ में बैठे किसी अपने दिल कर अपने क्या किया राम के आलोक उनके साथ में पूछते रहे तो और उनके साथ में आसमान नहीं किया क्यों योग्यता नहीं है इस जगह पर से उतर करके खड़े रहे। दूसरा उनको भय है कि कोई शत्रु न आ जाए पगासुर बकासुर कंस के जितने अंतर हैं उनको भय कि मैं लेकर के आ रहा हूँ जब तक वहाँ पर मथुरा में न पहुँचा दूँ काम नहीं हो जाए तब तक बीच में कोई सी बाधा आ करके कृष्ण बलदेव के ऊपर में आक्रमण न कर सके इसलिए पहरा देने के लिए से पास में बैठे वो खड़े रहे उन पेड़ों की छाया में अकृत जमुना में जाकर के बलदेव जी आचमन किया फिर उनको कहा कि आप रथ में बैठिए मैं अभी आ रहा हूँ क्यों उनकी सुरक्षा के पीछे रथ का ध्वंस बांधे और मथुरा जा रहे हैं ना अपू जी किस गए आए थे रथ में ध्वंस बांध अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आए हैं साथ में कूड़ा भी है घोड़ों को चलाने के लिए तो वो वहां पर रखे हैं। और दूसरी बात जमुना के किनारे में जहाँ पानी है वहां पर कीचड़ भी हो सकता है और हो सकता है कि कांटे कुछ भी हो विशेष करके ब्रज में कुछ ऐसे कांटे होते हैं जो दिखते नहीं है वो खुद वो पैर देंगे कपड़े में यहाँ से यहाँ तक फट जाएंगे छोड़ेंगे नहीं पैरों में यहाँ से यहाँ तक एकदम लग जाएंगे छोटे छोटे पतले पतले वो टूट जाएंगे वो निकलेंगे टूट करके उसी में रह जाएंगे। हम लोग गुरु जी के साथ में सत्संग में ये करते इसलिए कोई कोई चप्पल कोई कुछ पहन लेते हैं
दुख काटा
किंतु ये भी समझिए ये कांटे जो पहुंचते हैं भीतर में ये आजकल एक प्रक्रिया करती है चिकित्सा की आंखों प्रेशर का कम करती है इसीलिए जैसे जूते नहीं पहनते थे इसलिए कांटों का अपना विकास तो नहीं होता उसको निकालने से वो आंखों प्रेशर अपने ऊपर ये सब चीजें हो जाती है।
पर गोकुल कांटे से मेरा घाव हो गया
जलन होता है
इसलिए खाली पैर तो थे जूता तो कोई बनते थे इसलिए उनको रथ पर छाया नहीं के नशे करके आप इधर से बैठिए और उनसे उपमन से मैंने उनसे आदेश ले करके मैं जाऊँ क्या स्नान कर लूँ दो माता समय को चलने का इसलिए यहाँ का कांड में कहाँ की ये बात है निकट आ गए हैं दो पार हो गया सोचा जी आप यहीं पर स्नान करके हम लोगों की विधि है भजन में तीन बार स्नान क्या करने की स्नान करने की विधि है तीन बार महापुरुष तीन बार स्नान करते थे सवेरे दोपहर में और शाम को और सब कुछ में मंत्र करते ये नहीं कि दोपहर में जब फल आ गया ना प्रसाद का सब उस समय में प्रसाद को देख रहे हैं और अर्थात स्वागत भी कर रहे हैं और मंत्र जप रहे हैं इससे क्या होता है
सारे सर्व
ऐसा ये सब विधि नहीं है स्नान करके विधिवत आचमन करके तब फिर जाओ ऐसा नहीं जी प्रसाद पाने के समय या रात में 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब प्रसाद पाते हैं फल आ गया समय नहीं रहा तब उस समय दो डू इट इन दिस नीक ऑफ टाइम एट ए टाइम ऑफ संध्या इन मॉर्निंग वेन सन इज गोइंग टू राइज यू कैन डू इट इन ब्रह्म मुहूर्त आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ सन टाइम नॉट आफ्टर दैट इफ यू आर डूइंग इन हेल्थ एंड इन द मिड टाइम when at about 12 when sun is on the head okay. and in night when sun is going to set that there is some radiating west
right.
at that time we should do yoga if you are neglecting the time you will neglect your soul जितने समय पर ये सब अमित भी होना चाहिए इधर दोपहर में अपू जी उसे आदेश दिया अब मैं जाऊं क्यों इनमें ये भावना थी कि मैं इनका चाचा न हूं तो चाचा प्रेम से कहते हैं ये भगवान है उनको भगवान का बोध था ये कृष्ण साधारण है ये भगवान है और ये राम कौन है अनंत देव है उनके आराध्य के भी आराध्य है ये इसलिए उनसे आदेश लेकर के निवेश से करो तो रथ पर जाकर के बैठे उन्होंने कहा कि आप लोग बैठिए यहाँ कोमल गद्दी है रथ के ऊपर में और नीचे कठोर भूमि है कांटे हैं गोकुए हैं छाया नहीं है यमुना के किनारे इसलिए छाया में यहीं पर बैठी है और वहां पर धनुष पानी के आदि अस्त्र हैं और वो लोग भी आ नहीं सकते कोई आक्रमण करने वाले आएंगे भी तो वो लोग कुछ कर सकेंगे प्रतिकार इसलिए बैठा करके काली व्याकरण महाराज का स्नान आकर कृष्ण से कर करके उतरे और यमुना के जहाँ पर घाट होता है तो घाट वहां था नहीं जमीन कुछ कटा हुआ उसके नीचे और थोड़ा सा नीचे उससे और नीचे नीचे चले गए यमुना में उन्होंने स्नान किया आचमन किया प्रणाम किया यमुना जी को और विधवत आचरण स्नान किया विध्वस्त माने क्या तेल लगा करके और कूद गए और तैरने लगे कुल्ली फेंकने लगे ये सब नहीं आप लोग जानते हैं हमारे बक्रेश्वर पंडित को कि कौन से सुंदरी विद्या दिन में कभी नहीं जाते थे गंगा तट पर या यमुना तट पर रात में जाते जब कोई नहीं होता किसी को जहाँ शक्ति कर रहा है किसी कोई कुल्ला शौच कर रहा है कोई कुल्ला करके ऐसे यमुना में फेंक रहा है स्नान करते समय ऐसे ऐसे करते कुल्ला पे ऐसा मत करो उनकी कृपा के लिए बस घट से एक या दो तीन चुटकी लगाई चले आओ ये सब विधवत आचरण है आचरण करके उनको प्रणाम करो साष्टांग पहले तब उनकी उनका जल यहाँ पर धारण करो ये यमुना जी कृष्ण की क्षति कृष्ण की क्रिया है ये कृपा करें हमें निमज्जय तस्मिन् सलिले जपन ब्रह्म सनातन भावेव दिशे अपूर्व रामकृष्ण समझ यमुना में स्नान दुखी लगा करके पानी में देखा जप जपने लगे अपना कौन मंत्र ब्रह्म सनातन कौन ओम सहस्र शिष्टा
पुरुष
अनंत देव का उपासना बस इसी का मंत्र जपने लग गए
पांच मिनट लगे
जपने लगे सनातन ये सनातन पुरुष हैं कृष्ण चौरस में बैठे थे जब ही डुबकी लगाई और मंत्र जपते जपते देखा क्या अरे रथ से उतर सके हमारे जल में ही वो आ गए राम हो जैसे बैठे कैसे बैठे थे मुर्मू को तो था नहीं और रास्ते में तो उनको सोने का मुकुट भी नहीं मिलेगा बंसी हाथ में तो थी नहीं और जो ब्रज के जो भाव थे वो तो मैया जसोदा के यहाँ या किसी शक्ति के यहाँ रखा है कहाँ पर ब्रज में रखा इसलिए उस समय शंख चक्र गदा पद्मा या उसमें कभी कुछ नहीं ब्रज का भी भाव नहीं अभी आ गए हैं तटस्थ स्थल पर ब्रज का यही भाव जो था यही पर छोड़ दिया और जल में उनके पास में पहुंचे किस रूप में देवी और वसुदेव के पीछे और वहीं से अपना रथ पर जो बैठे थे वो उनके भीतर उनको जो दर्शन दिया वो कौन थे वसुदेव नंद और नंद और यशोदा के जो पुत्र थे पर अलग चित रूप में अपूर्व जी के साथ में कृष्ण और बलदेव जी जो रोहिणी नंदन राम और यशोदा नंदन या राधाकांत हैं वो नहीं थे पर डुबकी लगाई अब अस्सी के बीच में वो लौट गए, उनको पता ही नहीं चला। और फिर कोरस पर आकर के देखा जब उसे, अरे वो तुम वहीं पर बैठे हैं और हमने किसको देखा, ये कैसे देखा? अच्छा तो हमने समारोह कैसे देखा? आंख मिलने लगे, कहीं हमने स्वप्न देखा, जबकि आज बने समय को ठीक ठाक है, स्वप्नों को देखा नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, सावत एक दर्द से अश्रु लो रामकृष्ण और समन्वित हो, अंदर में देखा, फिर बाहर में देखकर उठ के खड़े हुए, सौ रथक सौ खत्म ही, रथ के ऊपर भी जब उठ करके खड़े हुए और वहां से जरा ऊंचे पर से बैठे थे, इसलिए नीचे से उठ करके थोड़ा सा ऊपर देखा, अभी वहां पर बैठे हैं। तो ये कैसे हो गया कि मैं रथ पानी के अंदर में दिखे और उधर रथ पर भी बैठे हैं, तीन भक्त, ये कैसे संभव हुआ? बहुत सोच में पड़ गए, हाँ नहीं या कुछ नहीं समझ सके। सुता आनंद दंडो है, आनंद दंडो है मैंने क्या, यहाँ आनंद दंडो है मैं किसको कहते हैं, बस और इनके पुत्र को देखा, वो जो नंदनंदन से थे जसुदा नंदन वो तो, और इसीलिए इस शब्द के द्वारा ये अपना है कि वो वहां पर जो जल में देखा ये कौन था, और फिर वही निकल करके अब रथ पर बैठ गए, देखा कि वही रथ पर बैठे, किंतु वो थे नहीं। पर ही सिर्फ चंदन है, चंदन मैंने रथ, अरे तभी रथ पर कौन बैठे हैं, वो जो भी चले गए न किस्तूल मध्य दर्शन, देखे तो जल्द थी, ये क्या बात, फिर डुबकी लगाई और वहां आंख खोल करके देखा क्या, अब इस बार दूसरा चीज देखा क्या, अनंत देव को देखा, अपने इष्ट देव को जो पहले जीवन का पलन कर रहे थे, प्रभु का शस्त्र फनाए हैं, सत्र देवता लोग सब उनकी आराधना कर रहे हैं, श्री भूल नीला इत्यादि जितनी भी शक्तियां हैं उनसे सम्मानित देखा, यहाँ तक कि प्रहलाद जी उनको हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार इत्यादि कर रहे हैं, जितने देव साधु हैं सब नमस्कार कर रहे हैं, देखकर के आश्चर्य, ये क्यों देखा? फिर देखा क्या, अनंत देव के गोदी में देखा, उसके भीतर मैंने देखा वो श्यामल चतुर्भुज एक मूर्ति है, अद्भुत रूप, चक्र गड़ा पर न असंत सुंदर, गला असंत सुंदर, कपोल इतने सुंदर, चतुर्भुज रूप है, सोने के मंडप आभूषण से परिमंडित है, और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह गई, ये क्यों ऐसा हो रहा, अब इसकी चर्चा हम कोई करने वाले सुविधा।